सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला 13। सार संक्षेप। मानवीय अंतराल में प्रसुप्त पड़ा विभूतियों का सम्मिश्रण जिस किसी में सघन विस्तृत रूप में दिखाई पड़ता है उसे प्रतिभा कहते हैं। जब इसे सदुद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह देवस्तर की बन जाती है और अपना परिचय महामानवों जैसा देती है। इसके विपरीत यदि मनुष्य इस संपदा का दुरुपयोग अनुचित कार्यों में करने लगे तो वह दैत्यों जैसा व्यवहार करने लगती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को जगाकर लोकमंगल में लगा देता है वह दूरदर्शी और विवेकवान कहलाता है। आज कुसमय ही है कि चारों तरफ दुर्बुद्धि का साम्राज्य छाया दिखाई देता है। इसी ने मनुष्य को वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उद्धत स्वभाव वाला वनमानुष बनाकर रख दिया है। दुर्बुद्धि ने अनास्था को जन्म दिया है एवं ईश्वरीय सत्ता के संबंध में भी नाना प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैल गई हैं। हम जिस युग में आज रह रहे हैं वह भारी परिवर्तनों की एक श्रृंखला से भरा है। इसमें परिष्कृत प्रतिभाओं के उभर आने व आत्मबल उपार्जित कर लोकमानस की भ्रांतियों को मिटाने की प्रक्रिया द्रुतागति से चलेगी। यह सुनिश्चित है कि युग परिवर्तन प्रतिभा ही करेगी। मनस्वी आत्मबल संपन्न ही अपनी भी औरों की भी नया खेते देखे जाते हैं। इस तरह सद्बुद्धि का उभार जब होगा तो जन जन के मन मस्तिष्क पर छाई दुर्भावनाओं का निराकरण होता चला जाएगा। सृष्टा की दिव्य चेतना का अवतरण हर परिष्कृत अंतःकरण में होगा एवं देखते देखते युग बदलता जाएगा। यही है प्रखर प्रज्ञारूपी परम प्रसाद जो सृष्टा नियमता अगले दिनों सुपात्रों पर लुटाने जा रहे हैं। अनुक्रमणिका 1. चेतना की सत्ता एवं उसका विस्तार 2. अनास्था की जननी दुर्बुद्धि 3. ईश्वर संबंधी भ्रांतियां 4. दैवी सत्ता की सुनियोजित विधि व्यवस्था 5. आत्मबल से उभरी परिष्कृत प्रतिभा 6. मानवीय पुरुषार्थ एवं दैवी शक्ति का युग्म 7. पात्रता से दैवी अनुग्रह की प्राप्ति 8. उदारता जन्मदात्री है प्रामाणिकता की 9. जीवन साधना एवं ईश उपासना 10. प्रखर प्रतिभा का उद्गम स्रोत 11. युग परिवर्तन प्रतिभा ही करेगी 12. अंगड़ता मिटे सुगड़ता विकसित हो 13. बड़े प्रयोजन के लिए प्रतिभावानों की आवश्यकता 14. सद्बुद्धि का उभार कैसे हो 15. इन दिनों की सर्वोपरि आवश्यकता चेतना की सत्ता एवं उसका विस्तार। इस संसार में जड़ के साथ चेतन भी गुंथा हुआ है। काम करती तो काया ही दिखती है पर वस्तुतः उसके पीछे सचेतन की शक्ति काम कर रही होती है। प्राण निकल जाए तो अच्छी खासी काया निर्जीव हो जाती है। कुछ करना धरना तो दूर, मरते ही सड़ने गलने का क्रम आरंभ हो जाता है और बताता है कि जड़ शरीर तभी तक सक्रिय रह सकता है जब तक कि उसके साथ ईश्वरीय चेतना जुड़ी रहती है। दोनों के पृथक होते ही समूचे खेल का अंत हो जाता है। एकाकी चेतना का अपना अस्तित्व तो है, उसकी निराकार सत्ता सर्वत्र समाई हुई है। साकार होती तो किसी एक स्थान पर एक नाम रूप के बंधन में बंधकर रहना पड़ता और वह ससीम बनकर रह जाती। इसलिए उसे भी अपनी इच्छित गतिविधियां चलाने के लिए किन्हीं शरीर कलेवरों का आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना संभव है। निराकार तो प्रकृति की लेसर एक्स किरणें आदि अनेक धाराएं काम करती हैं, पर उनको समझ सकना खुली आंखों से नहीं वरन किन्हीं सूक्ष्म उपकरणों के सहारे ही संभव हो पाता है। गाड़ी के दो पहिए मिलजुल कर ही काम चलाते हैं। इसी प्रकार इस संसार की विविध गतिविधियां विशेषत प्राणी समुदाय की इच्छित हलचलों के पीछे अदृश्य सत्ता ही काम करती है जिसे ईश्वर आदि नामों से जाना जाता है। विराट ब्रह्मांड में संव्याप्त सत्ता को विराट ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। वही सर्वव्यापी न्यायकर्ता सच्चित आनंद आदि विशेषणों से जाना जाता है। उसी का एक छोटा अंश जीवधारियों के भीतर काम करता है। मनुष्य में इस अंश का स्तर ऊंचा भी है और अधिक भी, इसलिए उसके अंतराल में अनेक विभूतियों की सत्ता प्रसुप्त रूप में विद्यमान पाई जाती है। यह अपने निजी पुरुषार्थ के ऊपर अवलंबित है कि उसे विकसित किया जाए या ऐसे ही उपेक्षित रूप में गई गुजरी स्थिति में वहीं पड़ी रहने दिया जाए। इस सम्मिश्रण का जहां भी अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत स्वरूप दिखाई पड़ता है उसे प्रतिभा कहते हैं। सदुद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने पर यही प्रतिभा देव स्तर की बन जाती है और अपना परिचय महामानवों जैसा देती है, किंतु साथ ही यदि मनुष्य अपनी उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग अनुचित कामों में करने लगे तो वह दुरुपयोग ही दैत्य बन जाता है। दैत्य अपने और अपने संपर्क वालों के लिए विपत्ति का कारण ही बनते हैं, जबकि देवता पग पग पर अपनी शालीनता और उदारता का परिचय देते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र में सुख शांति एवं प्रगति का वातावरण बनाते रहते हैं। दैत्य स्तर के अभ्यास बन जाने पर तो पतन और पराभव ही बन पड़ता है। उसमें तात्कालिक लाभ दिखते हुए भी अंततः दुर्गुणों का दुष्परिणाम ही प्रत्यक्ष होता है। सृष्टि के नियम में कर्म और फल के बीच कुछ समय लगने का विधान है। बीज बोने पर उससे वृक्ष बनने में कुछ समय लग जाता है। गर्भाधान के कई मास बाद बच्चा उत्पन्न होता है। आज का दूध कहीं कल जाकर दही बनता है। अभक्ष्य खा लेने पर दस्त उल्टी आदि होने का सिलसिला कुछ समय बाद आरंभ होता है। मनुष्यों में यह बालबुद्धि देखी जाती है कि वे तत्काल कर्मफल चाहते हैं, देर लगने पर अधीर हो जाते हैं और यह चाहते हैं कि हथेली पर सरसों जमे, कल तक उसमें पौधे जमने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। उतावली आतुरता उत्पन्न करती है और मन स्थिति प्रायः अर्धविक्षिप्त की सी बना देती है, जिसमें तात्कालिक लाभ भर दीख पड़ता है, चाहे वह कितना ही क्षणिक या दू खदाई ही क्यों न हो। वह विवेकवान दूरदर्शिता न जाने कहां चली जाती है, जिसे अपनाकर विद्यार्थी विद्वान, दुबले पहलवान, मंदबुद्धि तीव्र बुद्धि एवं निर्धन और पिछड़े धनवान बनते हैं। यह एक मनुष्य की प्रधान भूल है, जिसके कारण वह अपने जीवन का उद्देश्य, स्वरूप और वरिष्ठता तक भूल जाता है, मार्ग से भटककर झाड़ झंखाड़ों में मारा मारा फिरता है। इस भूल को देखकर कई बार यह भी स्वीकारना पड़ता है कि मनुष्य वस्तुतः ईश्वर की संतान तो है ही नहीं, वरन डार्विन के कथनानुसार वह बंदर की ही अंगड़ औलाद है। यह व्यंग्य उपहास मनुष्य के अचिंत्य चिंतन का है। इसी के कारण उसके चरित्र और व्यवहार में भ्रष्टता घुस पड़ती है और तरह तरह के आक्षेप उलाहना लगने शुरू होते हैं। दुष्ट चिंतन ही भ्रष्ट आचरण का निमित्त बनता है और इसी के कारण अनेक अवांछनीयताएं उसके सिर पर लद लेती हैं। कहना न होगा कि कर्मफल भोग बिना किसी को छुटकारा नहीं, भले ही वह भटकाव के कारण ही क्यों न बन पड़ी हो। चारे के लोभ में चिड़ियां और मछलियां बहेलियों के हाथ पड़ती और अपनी जान गंवाती देखी गई हैं। जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा, भले ही पीछे सतर्कता बरती गई हो या समझदारी से काम लिया गया हो। यही है भ्रांति, विकृति और विपत्ति का केंद्र। इसके भंवर में फंसकर अधिकांश लोग गर्हित गतिविधियां अपनाते और दुर्गति के भाजन बनते हैं। यदि इस भूल से बचा जा सके तो मनुष्य को ईश्वर का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ राजकुमार कहने में किसी को क्यों आपत्ति हो। फिर उसकी प्रवृत्ति स्वार्थी बनकर आनंद का रसास्वादन करते रहने में क्यों किसी प्रकार बाधक बने। क्यों उसे वासना, तृष्णा और अहंता के लौहपाशों में जकड़ जाने पर बंदी गृह के कैदी जैसी विडंबनाएं सहनी पड़े। क्यों मरघट में रहने वाले व्यक्तियों जैसा नीरस, निष्ठुर और हेय जीवन जीना पड़े। क्यों डरती डराती और रोती रुलाती जिंदगी जीनी पड़े। इस संसार में अंधकार भी है और प्रकाश भी, स्वर्ग भी है और नरक भी, पतन भी है और उत्थान भी, त्रास भी है और आनंद भी। इन दोनों में से जिसे चाहे मनुष्य इच्छानुसार चुन सकता है। कुछ भी करने की सभी को छूट है, पर प्रतिबंध इतना ही है कि कृत्य के प्रतिफल से बचा नहीं जा सकता। सृष्टा के निर्धारित क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। करने की छूट होते हुए भी उसे परिणाम भुगतने के लिए सर्वथा बाध्य रहना पड़ता है। यह दूसरी बात है कि इस प्रक्रिया के पकने में कुछ विलंब लगता है। मुकदमा दायर होने और सजा मिलने में अपने न्यायाधीश भी तो ढेरों समय लगा लेते हैं। ईश्वर का कार्यक्षेत्र तो और भी अधिक विस्तृत है। उसके न्याय करने में यदि देर लग जाती है तो मनुष्य को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है और न यह अनुमान लगाने की कि वहां अंधेरगर्दी चलती है। चतुरता के बलबूते अपने यहां तो अनेक अपराधी दंड पाने से बच जाते हैं, पर सर्वव्यापी और सर्वसाक्षी न्यायाधीश के न्याय में किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। इस वास्तविकता से असहमत रहने के कारण ही लोग प्रायः नास्तिक बन जाते हैं, कर्मफल की मान्यता का उपहास उड़ाते हुए स्वेच्छाचार बरतते हैं। विवेक होने की समझ तभी आती है जब समयानुसार क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आ खड़ी होती है। यहाँ तो प्रसंग इस बात का चल रहा है कि ईश्वर और जीव आपस में अविच्छिन्न होकर रह रहे हैं, अत्यंत सघन भाव और अविच्छिन्न साथी सहचर की तरह। स्थिति को देखते हुए इस बात की पूरी गुंजाइश है कि समर्थ बीज से उपजा समर्थ बालक अभीष्ट सहयोग प्राप्त कर सके और अभावग्रस्ता की दू खदा स्थिति से सरलतापूर्वक छूट सके। पर प्रचलित विडंबनाओं में से एक यह भी है कि नितांत निकट रहते हुए भी परिचय ऐसा बना लिया गया है मानो एक दूसरे से नितांत अपरिचित हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि विशालकाय नगरों में एक ही बड़े भवन की चारदीवारी में रहने वाले किराएदार एक दूसरे से परिचित तक नहीं होते। हम अपने शरीर के भीतरी अवयवों को भी पूरी तरह कहां समझ पाते हैं। शरीर में समाये विषाणुओं का पता नहीं चलता और यह भी नहीं बन पड़ता कि उनके कारण उत्पन्न होने वाले खतरों को समझ सकें और समय रहते कुछ उपाय उपचार कर सकें। समझदार कहे जाने वाले मनुष्य के इस भुलक्कड़पन को देखते हुए उसे नासमझ कहा जाए तो कुछ भी अनुचित न होगा। स्वस्थ दिखने वाले भी अस्वस्थता से जकड़े हुए हैं, घुन लगी लकड़ी की तरह भीतर ही भीतर पोले हो रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि अणु से लेकर विराट विभू के कण कण में एक अत्यंत सुव्यवस्था के संव्याप्त होने पर भी अपनी अकल यही धोखा देती रहती है कि इस खेत का कोई बोने वाला या रखवाला नहीं है, चाहे जो करने और चाहे जो पाने की मनमानी करते रहने में कोई हर्ज नहीं। आम प्रचलन में इन दिनों ऐसे ही सोच की भरमार है। अनास्था की जननी दुर्बुद्धि। इस भ्रांत धारणा की एक हानि यह है कि मनुष्य स्वेच्छाचारी व अनाचारी बनता है और अपनी राह पर तीर की नोक वाले कांटे बोने में लगा रहता है, न चाहते हुए भी अंधकार में परिस्थितियों को अपने समीप बुलाने के लिए निमंत्रण देने में बाध्य रहा है। अभावग्रस्तता, विषमता और विपन्नताएं प्रायः इसीलिए दिख पड़ती हैं। यदि सोच ठीक रही होती और उसके प्रकाश में सीधे मार्ग पर चल सकना संभव हुआ होता तो यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते, हंसती हंसाती जिंदगी जीते, एक दूसरे को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने में सहयोग करते। तब सीमित साधनों में भी लोग संतुष्ट रहते और अभीष्ट वातावरण बना हुआ होता। हर किसी को अदृश्य मार्ग का दृश्यमान अरुणोदय अनुभव करने का अवसर मिल रहा होता, पर उस दुर्बुद्धि को क्या कहा जाए जिसने मनुष्य को मर्यादाओं, प्रतिबंधों और वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उद्धृत स्वभाव वाला वनमानुष बनाकर रख दिया है। आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य को बंदर बनाने वाली दो भूलें एक साथ जन्मी हैं और उसने एक ही चक्कर में पूरी तरह चोट करने के बाद आगे बढ़ने का सिलसिला बनाया है। दूसरी भूल है अपने स्वरूप, कर्तव्य और उद्देश्य को भूलने की तथा अपने अति निकट रहने वाले उदार स्वभाव वाले परम सज्जन भगवान से परिचय बनाने तक की इच्छा न करने की अन्यमनस्कता, अवमानना, अपने से बड़ी शक्ति के साथ संबंध जोड़ने की महत्ता को छोटे बच्चे तक समझते हैं। वे उसी की ओर खिसकते हैं जिसके पास खिलौने, चॉकलेट और अच्छे उपहारों का सामान होता है, जो प्यार से बुलाते और दुलारपूर्वक गोदी में चढ़ाते हैं। जब इतनी समझ छोटे बालकों तक में पाई जाती है तो आश्चर्य होता है कि मनुष्य भगवान का घनिष्ठ बनने या उसे अपना घनिष्ठ बनाने में इतनी अधिक उपेक्षा क्यों बरतता है। ऊंची सतह के बड़े तालाब में अधिक पानी होता है, पास में ही कोई कम पानी वाला गड्ढा हो तो दोनों की तुलना में असाधारण अंतर होगा। इतने पर भी यदि दोनों के बीच एक नाली बना दी जाए तो ऊंचे तालाब का पानी नीचे गड्ढे को भरना जल्दी आरंभ कर देगा और वह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों जलाशय एक सतह पर नहीं आ जाते। नीचे वाले गड्ढे का पानी निश्चित रूप से ऊंचा उठेगा, भले ही इसमें ऊंचे वाले को कुछ घाटा ही क्यों न रहा हो। ईश्वर सान्निध्य के लिए किए गए प्रयास अंधविश्वास नहीं है। यदि उनका सही तरीका न समझ सके तो मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरण की तरह भ्रमरस्तों जैसी धमाचौकड़ी मचाते रहेंगे। तब तो खिन्नता, विपन्नता और असफलताएं ही हाथ लगेंगी। यदि रुके बिना धीरे धीरे चलने वाली चींटी भी पर्वत शिखर पर जा पहुंचती है तो फिर कोई कारण नहीं कि ईश्वर सान्निध्य का सही मार्ग विदित हो जाने पर उस प्रयोजन में आश्चर्यजनक सफलता न मिल सके। कहना न होगा कि सशक्तों की समीपता सान्निध्यता मनुष्य के लिए सदा लाभदायक ही होती है। सुगंध जलाते ही दुकान पर सजी चीजों में से अनेकानेक महकने लगती हैं। चंदन के समीप उगे झाड़ झंखाड़ भी प्रायः वैसी ही सुगंध वाले बन जाते हैं। पारस को छूने से लोहे से सोना बनने वाली उक्ति बहुचर्चित है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठने वालों का मनोरथ पूरा होने की बात सुनी जाती है। अमृत की कुछ बूंदे मुंह में चले जाने पर मुर्दे जी उठते हैं। भरिंग अपने संकल्प के प्रभाव से छोटे कीड़े को अपने सांचे में ढाल लेता है। हरियाली के समीपता में रहने वाले टिड्डे और सांप हरे रंग के हो जाते हैं। सीप में स्वाति की बूंदे गिरने पर मोती बनने और बांस के ढेरों में बंसलोचन उत्पन्न होने की मान्यता प्रसिद्ध है। इनमें से कितनी बात सही और कितनी गलत है, इस विवेचना की तो यहाँ आवश्यकता नहीं, पर इतना निश्चित है कि सज्जनों के, महामानवों के सान्निध्य में रहने वाले अधिकांश लोग प्रतापी जैसी विशेषताओं में से बहुत कुछ अपना लेते हैं। राजदरबारी शिष्टाचार का पालन अच्छी तरह कर सकते हैं, अतः हर कोई बड़ों का सान्निध्य चाहता है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सर्वशक्तिमान साथी के साथ जुड़ने में हमारे प्रयत्न उतने भी नहीं होते जितने कि स्वजन कुटुंबियों के साथ आत्मीयता प्रदर्शित करने में होते हैं। यदि ऐसा बन सकना संभव होता तो हम जड़ से न रहे होते और इस स्थिति में पड़े न रहते जिसमें कि किसी प्रकार खाते पीते इन दिनों समय गुजार रहे हैं। ईश्वर संबंधी भ्रांतियां। इस संदर्भ में एक और भी बड़ी मूर्खता जनसाधारण के मन में गहरी जड़ें जमा कर बैठ गई है कि ईश्वर में सिद्धांत रहित किसी ऐसे भूत प्रेत की कल्पना समाविष्ट कर ली गई जो निशिदिन उपहार बटोरते और नाक रगड़ते हुए भक्तजनों के पीछे रहता है, साथ ही पूजा पाठ की छुटपुट टंट घंट कर देने भर से फूलकर कुप्पा हो जाता है और मनचाहे उपहार वरदान बांटकर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करता है, भले ही वे कितनी ही अनावश्यक या अनुचित क्यों न हो। इसके अतिरिक्त इस परमेश्वर में एक और भी बुरी आदत है कि पूजा पत्री में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो भी वह आग बबूला हो जाता है और कल तक जिसे भक्त मानता था आज उसकी जान लेने तक को तैयार हो जाता है। राजी होने के लिए बड़े चढ़े उपहार मांगता है। अपना भक्त किसी दूसरे देवता की पूजा करने लगे तो उसकी भी अच्छी खासी खबर लेता है। यही है आज का सशक्त परमेश्वर, जिसे जातियों, वर्गों, कबीलों और मत मतांतरों वाले लोग अपने अपने तरीके से खोजते और अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप नाम व रूप देते हैं। इस कालभैरव से किसी का क्या भला होता है, इसे तो पूजने वाले ही जाने, पर एक बात निश्चित है कि इन स्वयंभू देवी देवताओं के स्वयंभू एजेंटों की पांचों उंगलियां हर घड़ी घी में रहती हैं। वे मनोकामना पूरी कराने अथवा गरीबी दूर करने कराने के बहाने हर स्थिति में अपनी एजेंटी का धंधा बढ़ाते चलते रहे हैं। विचारणीय यह है कि क्या सिद्धांत रहित उपहार, मनुहार का लालची और किसी भी चाटुकार की सही गलत मनोकामनाएं पूरी करने वाला कोई परमेश्वर हो भी सकता है क्या? इस संदर्भ में किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर उत्तर नहीं में ही देना पड़ता है, क्योंकि यह सिलसिला यदि चल पड़े तो रही बची विवेकशीलता और न्यायनिष्ठा के परखचे ही उड़ जाएंगे। ऐसे कबायली परमेश्वर को पूजने वाले ही मनोकामनाएं पूरी न होने पर उसे 100 गुनी गाली भी देते देखे गए हैं, जो कि आशाएं लगाए रहने से पूर्व मिन्नतें करने और चमचागिरी दिखाने में अतिवाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस भ्रांत मान्यताओं वाले जंजाल को ही यदि परमेश्वर माना जाए तो फिर इसी के साथ एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि इसके पीछे वास्तविकता कुछ भी न होने से लाभ कुछ भी नहीं होने वाला है। अंधे के हाथों कभी बटेर लग जाए तो बात दूसरी है, पर उससे भ्रांति पर आधारित मान्यता की पुष्टि नहीं होती। उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत तथाकथित पूजा पाठ करने वालों की मान्यताएं डावाडोल हो सकती हैं। जो थोड़ी बहुत आधे अधूरे मन से टंट घंट करते थे, उसमें भी कमी आ सकती है। भक्तिवाद की आड़ में यह मिथ्या भ्रम जंजाल चलाते रहने वाले को तो अपने व्यवसाय में घाटा दीख पड़ते ही अंक होने में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो प्रतिपक्ष पर किसी भी स्तर का आक्रोश लेकर पिल पड़े, पर सही अध्यात्म की स्थापना करने के लिए यह भी सहना पड़े तो उद्यत रहना चाहिए। दैवी सत्ता की सुनियोजित विधि व्यवस्था। भ्रांतियों का स्वरूप समझ लेने के उपरांत यह भी आवश्यक है कि उसका समाधान भी समझा जाए और यह जानने का प्रयत्न किया जाए कि वह वास्तविकता क्या है जिसकी आड़ लेकर धुएं का बादल बनाकर खड़ा कर दिया गया। समझा जाना चाहिए कि संसार के दृश्यमान जड़ पदार्थों के साथ साथ ऐसी एक सर्वव्यापी नियामक सत्ता भी है जो इस आश्चर्य भरे ब्रह्मांड को बनाने से लेकर और भी न जाने क्या क्या बनाती रहती है। असल की नकल इन दिनों खूब चल पड़ी है। नकली चीजें सस्ती भी होती हैं, चलती भी अधिक हैं और बिक्री भी उन्हीं की अधिक होती देखी जाती है। नकली सोने के, नकली चांदी के जेवरों की दुकानों में भरमार देखी जाती है। नकली हीरे मोती भी खूब बिकते हैं। नकली रेशम, नकली दांत अधिक चमकते हैं। नकली घी से दुकानें पटी पड़ी हैं। नकली शहद सस्ते भाव में कहीं भी मिल सकता है, पर वह वस्तुएं ऐसे चमकीली होते हुए भी असली जैसा सम्मान नहीं पाती। बेचने पर कीमत भी नहीं उठती। अध्यात्म का नकलीपन भी बहुत प्रचलित हुआ है। उसे उपहार मनुहार की टंटखंट पूरी करके उन लाभों को पाने की प्रतीक्षा की जाने लगती है जिनके लिए प्रबल पुरुषार्थ और व्यक्ति के उठे हुए स्तर की अपेक्षा की जाती है। समुचित मूल्य न चुकाने पर कोई कीमती वस्तु ऐसे ही तिकड़मबाजी के सहारे हाथ कैसे लगे। देखा जाता है कि मनोकामनाओं का पुलिंदा बांधे फिरने वाले जिस तिस देवी देवता के पीछे गिड़गिड़ाते फिरने के उपरांत भी खाली हाथ लौटते हैं और विधि विधान में कोई गलती रहने या पूजा पाठ को व्यर्थ बताने की नास्तिकों जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। आए दिन लाभ मिलते रहने की बात न बनते देखकर उस प्रक्रिया को छोड़ बैठते हैं या जब तब अपने मन से लकीर पीट लेते हैं। अच्छा होता अध्यात्म का दर्शन, स्वल्प, उद्देश्य और प्रयोग के संबंध में गहराई में उतरकर जानने का प्रयत्न किया गया होता और पूरा मूल्य देकर असली चीज पाने की मान्यता को बनाया गया होता। तब इस संदर्भ में किसी को कोई शिकायत करने की आवश्यकता न पड़ती। कहा जा चुका है कि विश्व के शक्ति भंडार में सर्वोपरि आत्मबल है। उसकी तुलना धनबल, शस्त्रबल, सत्ताबल आदि से नहीं हो सकती। वे सभी छोटे और बौने पड़ते हैं। जो कार्य आत्मबल संपन्न कर सके वे दूसरों से नहीं बन पड़े। पुरुषार्थ का अपना प्रयोजन तो है, पर यदि उसके पीछे आत्मबल का समावेश न हो तो फिर समझना चाहिए कि वह फुलझड़ी की तरह तमाशा मात्र बनकर रह जाएगा। असुरों में से अनेकों ने साधनाबल के सहारे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, पर वे न तो अधिक समय टिकी और न अंततः सुखद परिणाम ही प्रस्तुत कर सकी। भस्मासुर, महिषासुर, वृतासुर, रावण आदि की सिद्धियां अंततः उनके संबंधियों के लिए विनाश और विपत्ति का कारण ही बनी। इसके विपरीत उस दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने वाले स्वल्प साधनों में भी उच्च स्तरीय एवं प्रशंसनीय सफलता प्राप्त कर सके। बुद्ध, गांधी, अरविंद, रमन, रामकृष्ण, चाणक्य, रामदास, विवेकानंद, दयानंद आदि की साधनाएं जहां उन्हें मनस्वी बना सकी, वहीं उनके कर्तृत्व ने समाज का असाधारण हित साधन किया। ऋषियों की समस्त श्रृंखला उसी प्रकार की है। वे स्वयं तो आकाश में नक्षत्रों की तरह अभी भी चमकते हैं, साथ ही उनके समय में उनके साथ जो भी रहे वे भी सत्संगजन्य लाभों से निहाल होकर रहे और उच्च कोटि के अनुदान वरदान प्राप्त करके कृतकृत्य हो सके। 21वीं सदी में मानवीय पुरुषार्थ की आवश्यकता तो बहुत पड़ेगी। सतयुग की तरह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थी, परिव्राजकों की तरह असंख्यों को आत्मोत्कर्ष की सेवा साधनाओं में भी अपने को खपाना पड़ेगा, किंतु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इतना बड़ा काम मात्र मानवीय भागदौड़ से पूरा हो जाएगा। जब अपने छोटे से कुटुंब के थोड़े से दायरे में वाद विवाद मनोमालिन्य व लोकव्यवहार के झगड़े काबू में नहीं आ पाते, तो 600 करोड़ मनुष्यों में से प्रत्येक के पीछे लगी हुई ढेरों दुष्प्रवृत्तियों के कुप्रचलन कुछ थोड़े से व्यक्ति थोड़ी सी योजनाएं बनाकर हल्के फुल्के व्यक्तियों के सहारे उसे पूरा कर सकेंगे, यह आशा कैसे की जा सकती है। इतने प्रबल पुरुषार्थ और समाधान के पीछे दैवी शक्ति का समावेश भी होना चाहिए, अन्यथा मानवीय पुरुषार्थ अपनी भूलों, कमजोरियों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही सफलता के स्थान पर असफलता प्राप्त करते देखते गए हैं। आत्मबल से उभरी परिष्कृत प्रतिभा। अध्यात्मबल का संपादन कठिन नहीं वरन सरल है। उसके लिए आत्मशोधन एवं लोकमंगल के क्रियाकलापों को जीवनचर्या का अंग बना लेने भर से काम चलता है। व्यक्तित्व में पैनापन और प्रखरता का समावेश इन्हीं दो आधारों पर बन पड़ता है। यह बन पड़े तो दैवी अनुग्रह अनायास बरसता है और आत्मबल अपने भीतर से ही प्रचुर परिमाण में उभर पड़ता है। केवट, शबरी, गिलहरी, रीछ, वानर, ग्वाल, बाल जैसों की भौतिक सामर्थ्य स्वल्प थी, पर वे अपने में देवत्व की मात्रा बढ़ा लेने पर ही इतने मनस्वी बन सके, जिनकी चर्चा इतिहासकार आए दिन करते रहते हैं। सुग्रीव की विजय के पीछे उसकी निज की बलिष्ठता मात्र ही कारण नहीं हुई थी। नरसी मेहता ने अभीष्ट धन अपने व्यवसाय से नहीं कमाया था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसी एक धनवान की कृति नहीं है। इनके पीछे देवत्व का अदृश्य सहयोग भी सम्मिलित रहा है। ध्रुव को ब्रह्मांड के केंद्र बनने का श्रेय उसके तपोबल के सहारे ही संभव हुआ था। अगस्त्य का समुद्रपान और परशुराम द्वारा अपने कुल्हाड़े के बल पर लाखों करोड़ों का जो ब्रेन वॉशिंग हुआ था, उसे किन्हीं वक्ताओं के धर्मोपदेश से कम नहीं कहा जा सकता। सतयुग ऋषियुग का ही प्रकट रूप है। असुरता की अभिवृद्धि होते ही कलहयुग कलियुग आ धमकता है। उच्च स्तरीय प्रतिभाओं का पौरुष जब कार्य क्षेत्र में उतरता है तो न केवल कुछ व्यक्तियों व कुछ प्रतिभाओं को वरन समूचे वातावरण को ही उलट पुलट कर रख देता है। धोबी की भट्टी पर चढ़ने से मैले कपड़ों को सफाई से चमचमाते देखा गया है। भट्टी में तपने के बाद मिट्टी मिला बेकार लोहा फौलाद स्तर का बनता और उसके द्वारा कुछ न कुछ कर दिखाने वाले यंत्र उपकरण बनते हैं। आत्मशक्ति की प्रखरता को इसी स्तर का बताया और पाया गया है। 21वीं सदी से प्रारंभ होने वाला युग अभियान संपन्न तो प्रतिभावान मनुष्यों द्वारा ही होगा, पर उनके पीछे निश्चित रूप से ऐसी दिव्य चेतना जुड़ी हुई होगी, जैसी कि फ्रांस की एक कुमारी जोन ऑफ आर्क ने रिंग कौशल से अपरिचित होते हुए भी अपने देश को पराधीनता के पाश से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। महात्मा गांधी और संत विनोबा जी जो कर सके, वह उस स्थिति में कदाचित ही बन पड़ता जो वे बैरिस्टर, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता आदि बनकर कर सके होते। चंद्रगुप्त जब विश्व विजय की योजना सुनकर सकपकाने लगा तो चाणक्य ने कहा, तुम्हारी दासी पुत्र वाली मनोदशा को मैं जानता हूँ, उससे ऊपर उठो और चाणक्य के वरद पुत्र जैसी भूमिका निभाओ। विजय प्राप्त कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। शिवाजी जब अपने सैन्य बल को देखते हुए असमंजस में थे कि इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी, तो समर्थ रामदास ने उन्हें भवानी के हाथों अक्षय तलवार दिलाई थी और कहा था, तुम छत्रपति हो गए, पराजय की बात ही मत सोचो। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के बहाने बला और अतिबला का कौशल सिखाने ले गए थे, ताकि वे युद्ध लड़ सकें, असुरता का समापन और रामराज्य के रूप में सतयुग की वापसी संभव कर सकें। महाभारत लड़ने का निश्चय सुनकर अर्जुन सकपका गया था और कहने लगा कि मैं अपने गुजारे के लिए तो कुछ भी कर लूंगा, फिर हे केशव, आप इस घोर युद्ध में मुझे नियोजित क्यों कर रहे हैं। इसके उत्तर में भगवान ने एक ही बात कही थी कि इन कौरवों को तो मैंने पहले ही मारकर रख दिया है, तुझे यदि श्रेय लेना है तो आगे आ, अन्यथा तेरे सहयोग के बिना भी वह सब हो जाएगा जो होने वाला है। घाटे में तू ही रहेगा, श्रेय गंवा बैठेगा और उस गौरव से भी वंचित रहेगा जो विजेता और राज्य सिंहासन के रूप में मिला करता है। अर्जुन ने वस्तुस्थिति समझी और कहने लगा, करिष्ये वचन तब, अर्थात आपका आदेश मानूंगा। ऐसी ही हिचकिचाहट हनुमान, अंगद, नल, नील आदि की रही होती तो वे अपनी निजी शक्ति के बल पर किसी प्रकार जीवित तो रहते, पर उस अक्षय कीर्ति से वंचित ही बने रहते जो उन्हें अनंतकाल तक मिलने वाली है। युग सृजन में श्रेय किन्हीं को भी मिले, पर उसके पीछे वास्तविक शक्ति उस ईश्वरीय सत्ता की ही होगी, जिसने नई सृष्टि रचने जैसे स्तर की अभिनव योजना बनाई है और उसके लिए आवश्यक साधनों एवं अवसर विनिर्मित करने का साधन जुटाने वाला संकल्प किया है। मानवीय पुरुषार्थ एवं दैवी शक्ति का युग। कठिनाइयों को निरस्त करने वाला साहस अपने आप में ईश्वरीय अनुग्रह है। राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांतिकारियों की सफलताएं उनके साहस के साथ जुड़ी हैं। दुस्साहसियों में नेपोलियन जैसे मनुष्यों की गणना प्रायः होती रहती है। इंग्लैंड के ऊपर जब जर्मनी की बेतहाशा बमबारी हो रही थी और उस देश के पराजित होने का अंदेशा नागरिकों के मन पर बुरी तरह छाया हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री। यह नारा घर घर पर अंकित कर दिया गया और जनता में नए सिरे से उत्साह जगाया गया कि जीतेगा अंततः इंग्लैंड ही। इन दोनों से जनजीवन में नया मनोबल उभरा और उसके सहारे उभरते पराक्रम ने इंग्लैंड की हारती बाजी को जिताकर दिखाया। दुष्प्रयोजनों के लिए तो लुटेरे हत्यारे भी साहस दिखाते रहते हैं, पर ऊंचे उद्देश्यों के लिए जब भी साहस उभरता है, तब उसके पीछे साधनों की कमी होते हुए भी मनोबल का ऐसा प्रचंड प्रवाह उभरता है जिसके सहारे पराजय विजय में बदल जाती है। ऐसा सत्साहस प्रायः दैवी ही होता है। क्षुद्र स्तर के प्राणी तो स्वार्थ सिद्धि की लड़ाई ही लड़ते देखे गए हैं। मोहल्लों में कुत्तों जैसी लड़ाई होती तो कहीं भी देखी जाती है। अगले दिनों प्रतिभाओं को युग परिवर्तन के लिए ऐसा कुछ पराक्रम करना पड़ेगा जिसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कहा जा सके, क्योंकि इतने व्यापक क्षेत्र में इतने बड़े और इतने कष्टसाध्य परिवर्तन प्रस्तुत करने का अवसर कदाचित पृथ्वी पर पहली बार ही मिला है। राजाओं और सामंतों की सेना अपने साधकों के बल पर लड़कर हारती और जीतती रही है, पर ऐसा प्रथम अवसर है जब अधिकांश राजा प्रजा का विकृत चिंतन और चरित्र नए सिरे से अभ्यास से पूर्व ही उत्कृष्टता की दिशा में ढाला गया है और उसके लिए वरिष्ठ प्रतिभाओं को आगे बढ़कर बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी भूमिका निभाने के लिए सामूहिक रूप से समुद्यत होना पड़ेगा। इसके लिए दैवीय अनुदान आवश्यक है। यदि वह न बन पड़े तो मौसम की प्रतिकूलता की बड़ी सैन्य सज्जा को आगे बढ़ने से रोक देती है। फिर इतने बड़े अभियान में तो साधन रहित वर्ग के लिए छोटी छोटी कठिनाइयां ही प्रगति का पथ अवरुद्ध कर सकती हैं, उल्टे संकट खड़े कर सकती हैं। पीछे की हवा हो तो पैदल अथवा वाहन सरलता पूर्वक तेज दौड़ लेते हैं, जबकि सामने की तेज हवा हा दबाव पथ में पग पग पर रोकथाम करता है। पात्रता से दैवी अनुग्रह की प्राप्ति। नवसृजन के इस विश्वमानव के भाग्य भविष्य को नए सिरे से लिखने वाले सुयोग में दैवी शक्ति का निश्चित रूप से बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए किसी को किसी से कुछ मांगने की, अनुग्रह या अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पात्रता अनुरूप बना लेने पर सब कुछ अनायास ही खींचता चला आता है। वर्षाकाल में खुले में रखा बर्तन अनायास ही भर जाता है, जब छोटी कटोरी हो तो उसमें उतना ही कम पानी दिखेगा, जबकि बड़ी बाल्टी पूरी तरह भरी हुई मिलेगी। यह पात्रता का ही चमत्कार है। गहरे सरोवर लबालब भर जाते हैं, जबकि ऊंचे टीलों पर पानी की कुछ बूंदें भी नहीं टिकती। वर्षा में उपजाऊ जमीन हरियाली से लद जाती है, पर ऊसर बंजर ज्यों के त्यों वीरान पड़े रहते हैं। नदियां चूंकि समतल की अपेक्षा गहरी होती हैं, इसलिए चारों ओर का पानी सिमटकर उनमें भरने और बहने लगता है। यह पात्रता ही है जिसके अनुसार छात्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार आदि उपलब्ध होते हैं। यह लाभ मात्र चापलूसी करने भर से किसी को नहीं मिलते। कोई अफसर रिश्वत या खुशामद से प्रसन्न होकर किसी को यदि अनुचित पद या उपहार प्रदान कर दे तो उसकी न्यायनिष्ठा पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी पूरी न करने का आक्षेप लगता है और उस कारण उसकी खिंचाई होती है। यह नियम शाश्वत है, इसलिए इंसान पर भी लागू होता है और उनके भगवान पर भी। पात्रता अर्जित कर लेने पर बिना किसी अतिरिक्त कोशिश सिफारिश के अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर लिए जाते हैं, इसलिए दैवी शक्तियों के अवतरण के लिए पहली शर्त है साधक की पात्रता, पवित्रता और प्रामाणिकता। सर्वत्र इसी की खोज और मांग है, क्योंकि विवाह योग्य हो जाने पर अभिभावक उपयुक्त जोड़ा तलाश करने के लिए काफी भाग दौड़ करते हैं, किंतु कोई कुपात्र पड़ोस में बसता हो तो भी उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं, खुशामद सिफारिश और संदेश पहुंचने पर भी ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिक सिद्धियां ईश्वर की पुत्रियां हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सर्वांग सुंदर होना चाहिए, भीतर से भी और बाहर से भी। यही पात्रता की परिभाषा है। उदारता जन्मदात्री है प्रामाणिकता की। दूसरा सद्गुण जो इतना ही आवश्यक है वह है उदारता, जिसके अंतराल में करुणा, ममता, सेवा सहायता की कोमलता है। वही दूसरों को भी निष्ठुरता से विरत कर सकता है, करुणाकर बना सकता है। ईश्वर की अनुकंपा उन्हें मिलती है जो दूसरों पर अनुकंपा करने में रुचि रखते हैं। निष्ठुरों की कठोरता और संकीर्ण स्वार्थपरता देखकर पड़ोसियों से लेकर भगवान तक की अनुकंपा वापस लौट जाती है। असुरों की निष्ठुरता और अनैतिकता प्रसिद्ध है, इसलिए उनका अंत भी अन्यत्र से दौड़ पड़ने वाली निष्ठुरता के द्वारा ही होता है। असुरों के वध की कथाएं प्रायः इसी तथ्य से सनी हुई मिलती हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य आत्मा परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन की उदारता जगाना भर है। यदि भव कृत्यों से ये दोनों उद्देश्य सद रहे हों तो समझना चाहिए कि उनका समुचित लाभ मिलेगा, किंतु यदि क्रिया मात्र चल रही हो और सद्भावनाओं के विकास परिष्कार पर उनका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो तो समझना चाहिए कि क्रियाकलापों की लकीर भर पीटी जा रही है और उसके सहारे आत्मा प्रवंचना जैसी ही कुछ विडंबना बन पड़ेगी। इन दिनों प्रायः ऐसा ही खेल खिलवाड़ चलता रहा है और लोग देवी देवताओं की हजामत बनाने के लिए चित्र विचित्र स्वांग रचते और बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करते रहे हैं। देवता उतने मूर्ख हैं नहीं जितने की समझे जाते हैं। हेय स्तर का व्यक्ति ही छोटे मोटे उपहारों या कथन श्रवणों से भरमाया जा सकता है, पर देवता तो वास्तविकता परखने में प्रवीण होते हैं, साथ ही इतने दरिद्र भी नहीं है कि छोटे छोटे उपहारों के लिए आंखें मूंद कर दौड़ पड़े, जो मांगा गया है उसे मुफ्त में ही बांटते बखेरते रहें। यही कारण है कि मनौती मनाने के लिए पूजा पत्रिका सरंजाम जुटाने वालों में से अधिकांश को निराश रहना पड़ता है। आरंभ में जो लॉटरी खुलने जैसा उत्साह होता है, वह परीक्षा की कसौटी पर कसे जाने पर निरर्थक ही सिद्ध होता है। आस्तिकता के प्रति उपेक्षा आशंका का भाव बढ़ते जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग कम कीमत में बहुमूल्य वस्तुएं पाने की आशा लगाने लगते हैं, और जब वह विसंगति गलत सिद्ध होती है तो कभी साधना को, कभी देवता को और कभी अपने भाग्य को दोष देते हुए भविष्य के लिए एक प्रकार से अनास्थावान ही बन जाते हैं। हमें तथ्यों को समझना चाहिए। प्रामाणिकता की परख होने पर ही कोई बड़े काम, दायित्व या अधिकार सौंपे जाते हैं। ईश्वर के दरबार में भी यही नियम है। वहां साधना का अर्थ जीवनचर्या के हर पक्ष में आदर्शवादिता और प्रामाणिकता का समावेश लगाया जाता है। जो भी इस कसौटी पर खरा उतरता है, उसको हर स्वर्णकार की तरह सम्मानपूर्वक उचित मूल्य मिलता है, पर पीतल को सोना बनाकर बेचने की फिराक में फिरने वाले को हर कहीं दुत्कारा जाता है। छोटे बच्चे को खड़ा होने और धीरे धीरे चलने में सहारा देने के लिए पहिए की हाथगाड़ी बना दी जाती है। बच्चे को खड़ा तो अपने ही पैरों पर होना पड़ता है, पर उस गाड़ी की सहायता मिलने से कार्य सरल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूजा अर्चा मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रामाणिक बनाने भर के लिए की जानी चाहिए, अन्यथा भीतर घटियापन छाया रहने पर यह भी कहा जा सकता है कि साधना का सटीक अर्थ न समझा गया, उसे सही रीति से संपन्न न किया जा सका। उदारम न होना भी ईश्वर भक्ति का अविच्छिन्न अंग है। कृपणता, निष्ठुरता एवं संकीर्ण स्वार्थपरता उसके रहते टिक ही नहीं सकती। संत भक्तजन इसीलिए अमीर नहीं रहते कि वे उपलब्धियों का न्यूनतम उपयोग करके जो बचत संभव हो उसे प्रसन्नता पूर्वक परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहे। यह उदारता ही उनमें दैवी उदारता का आह्वान करती और उसे घसीटकर बड़ी मात्रा में सामने ले आती है। बादल उदारता पूर्वक बरसते रहते हैं, समुद्र उनके भंडार को खाली न होने की प्रतिज्ञा निभाते रहते हैं, नदियां भूमि पर प्राणियों की प्यास बुझाती हैं, उनमें जल कम न पड़ने पाए इसकी जिम्मेदारी हिमालय पर पिघलती रहने वाली बर्फ उठाती है, पेड़ बिना मूल्य फल देते रहते हैं, बदले में नई फसल पर उन्हें उतने ही नए फल बिना मूल्य मिल जाते हैं, गाय दूध देती है इससे उसका थन खाली नहीं हो जाता, सवेरे खाली हो गया थन शाम तक फिर उतने ही दूध से भर जाता है, धरती बार बार अन्न उपजाती है, उसकी उर्वरता अनादिकाल से बनी हुई है और अनंतकाल तक अक्षुण बनी रहेगी। उदार सेवा भावना का जिसके चिंतन और व्यवहार में जितना पुट है, समझना चाहिए कि उस प्रामाणिक व्यक्ति को समाज का सम्मान भरा सहयोग और ईश्वर का अनुदान उसी अनुपात में निरंतर मिलता रहेगा। जीवन साधना एवं ईशुपासना। आस्तिकता या आध्यात्मिकता का क्रियापक्ष भी अपने स्थान पर उचित है। उससे अभीष्ट प्रयोजन के साधने में सुविधा भी रहती है और सरलता भी होती है, पर किसी को यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि पूजा कृत्यों की प्रक्रिया पूरी करने भर से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी रहने वाली फलश्रुतियों और विभूतियों की प्राप्ति भी हो जाती है। यह तो संकेत सिंबल मात्र है जो दिशा निर्धारण करता है और मील के पत्थर की तरह बताता है कि अपनी दिशाधारा किस ओर होनी चाहिए। साधना का प्रयोजन है जीवन साधना, अर्थात अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता बरतना। कड़ाई का तात्पर्य है संयम, अनुशासन का कठोरता पूर्वक परिपालन। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम ही साधना के तीन चरण हैं। इन्हीं को तत्परता के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोजन के लिए अपव्यय को कठोरता पूर्वक रोकना पड़ता है और जो समय, श्रम, चिंतन, साधन आदि बचाया जा सकता है उसे तत्परता पूर्वक रोका जाता है, और साथ ही इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सत्प्रयोजनों में श्रेष्ठतम सदुपयोग किस प्रकार बन पड़े। यदि यह निभ सके तो समझना चाहिए कि वास्तविक संयम साधना की तपश्चर्या सही दिशा में रीति से चल रही है और उसका सदुपयोग भी उच्च स्तरीय प्रतिफल प्रदान करके रहेगा। पूजा अर्चा प्रतीक मात्र है जो बताती है कि वास्तविक उपासक का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसके साथ क्या उद्देश्य और क्या उपक्रम जुड़ा रहना चाहिए। देवता के सम्मुख दीपक जलाने का तात्पर्य यहाँ दीपक की तरह जलने और सर्वसाधारण के लिए प्रकाश प्रदान करने की अवधारणा हृदयगम कराना है। पुष्प चढ़ाने का तात्पर्य यह है कि जीवन क्रम को सर्वांग सुंदर, कोमल व सुशोभित रखने में कोई कमी न रखने दी जाए। अक्षत चढ़ाने का तात्पर्य है कि हमारे आय का एक नियमित अंशदान परमार्थ प्रयोजन के लिए लगता रहेगा। चंदन लेपन का तात्पर्य यह है कि संपर्क क्षेत्र में अपनी विशेषता सुगंध बनकर अधिक विकसित हो। नैवेद्य चढ़ाने का तात्पर्य है अपने स्वभाव और व्यवहार में मधुरता का अधिकाधिक समावेश करना। जप का उद्देश्य है अपने मन क्षेत्र में निर्धारित प्रकाश परिपूर्णता का समावेश करने के लिए उसकी रट लगाए रहना। ध्यान का अर्थ है अपनी मानसिकता को लक्ष्य विशेष पर अविचल भाव से केंद्रीभूत किए रहना। प्राणायाम का प्रयोजन है अपने आप को हर दृष्टि से प्राणवान, प्रखर व प्रतिभा संपन्न बनाए रहना। समूचे साधना विज्ञान का तत्वदर्शन इस बात पर केंद्रीभूत है कि जीवनचर्या का बहिरंग और अंतरंग पक्ष निरंतर मानवीय गरिमा के उपयुक्त सांचे में ढलता रहे, कषाय कलंशों के दोष दुर्गुण जहां भी छिपे हुए हों उनका निराकरण होता चले। मनुष्य जितना ही निर्मल होता है उसे उसी तत्परता के साथ आत्मा के दर्पण में ईश्वर की झांकी होने लगती है। इसी को प्रसुप्ति का जागरण में परिवर्तित होना कहते हैं। आत्मज्ञान की उपलब्धि या आत्म साक्षात्कार यही है। इस दिशा में जो जितना बढ़ पाते हैं उन्हें उसी स्तर का सुविकसित सिद्ध पुरुष या महामानव समझा जाता है। सड़क चलने में सहायता तो करती है पर उसे पार करने के लिए पैरों का पुरुषार्थ ही काम देता है। भजन पूजन तो एक प्रकार का जल स्नान है जिससे शरीर पर जमी हुई मलिनता दूर होती है। यह आवश्यक होते हुए भी समग्र नहीं है। जीवन धारण किए रहने के लिए तो खाना पीना सोना जागना आदि भी आवश्यक है। पूजा अर्चा का महत्व समझा जाए किंतु यह मान बैठने की भूल न की जाए कि आत्मिक प्रगति में पात्रता और प्रामाणिकता की उपेक्षा की जाने लगे या मान लिया जाए कि क्रिया कृत्यों से ही अध्यात्म का समस्त प्रयोजन पूरा हो जाएगा। यदि वरिष्ठता और महत्ता की जांच पड़ताल करनी हो तो एक ही बात खोजनी चाहिए कि व्यक्ति सामान्य जनों की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व चिंतन चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिक समावेश कर सका या नहीं। सोने को कसौटी पर कसने के अतिरिक्त आग में भी तपाया जाता है तब पता चलता है कि उसके खरेपन में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसी प्रकार देखा यह भी जाना चाहिए कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे लोकमंगल कार्यों में किसका कितना बड़ा चढ़ा अनुदान रहा। अद्यावधि संसार के इतिहास में महामानवों तथा ईश्वर भक्तों का इतिहास इन्हीं दो विशेषताओं से जुड़ा हुआ रहा है। इनने इन्हीं दो चरणों को क्रमबद्ध रूप से उठाते हुए उत्कृष्टता के उच्च लक्ष्य तक पहुँच सकना संभव बनाया है। अन्य किसी के लिए भी इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। कोई ऐसा शॉर्टकट कहाँ है जिसे पकड़कर जीवन के स्तर को घटिया बनाए रखकर भी कोई ठोस सार्थक प्रगति की जा सके। चतुरता के हथकंडों में से कई ऐसे हैं तो सही जो बाजीगरों जैसे चमत्कार दिखाकर भोले दर्शकों को अपने कुतूहलों से चमत्कृत कर देते हैं। बेईमानी से भी कभी कभी कोई कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है पर इस तथ्य को भुला ना दिया जाए कि बाजीगर हथेली पर सरसों जमा तो देते हैं पर उसका तेल निकालते और लाभ मिलते किसी ने नहीं देखा। पानी के बबूले कुछ ही देर उछल कूद करते और फिर सदा के लिए अपना अस्तित्व गंवा बैठते हैं। धातुओं की खदानें जहां कहीं होती हैं उस क्षेत्र के अपने सजातीय कणों को धीरे धीरे खींचती और एकत्र करती रहती हैं। उनका क्रमिक विस्तार इसी प्रकार हो जाता है। जहां सघन वृक्षावली होती है वहां भी हरितिमा का चुंबकत्व आकाश से बादलों को खींचकर अपने क्षेत्र में बरसने के लिए विवश किया करता है। खिले हुए फूलों पर तितलियां न जाने कहां कहां से उड़ उड़कर आ जाती हैं। इसी प्रकार प्रामाणिकता और उदारता की विभूतियां जहां कहीं भी सघन हो जाती हैं वे अपने आप में एक चुंबक की भूमिका निभाती हैं और अखिल ब्रह्मांड में अपनी सजातीय चेतना को आकर्षित करके अवधारण कर लेती हैं। ईश्वरीय अंश इसी प्रकार मनुष्यों की अपेक्षा निश्चित रूप से प्राणवानों में अधिक पाया जाता है। सामान्य प्राण को महाप्राण में परिवर्तित करना ही ईश्वर उपासना का उद्देश्य है। इसी के फलित होने पर मनुष्य को मनीषी क्षुद्र को महान और नर को नारायण बनने का अवसर मिलता है। प्रखर प्रतिभा का उद्गम स्रोत। जिस प्रकार कुछ भी उपार्जन करने में मनुष्य समर्थ है उसी प्रकार उसकी इच्छा पर यह भी निर्भर है कि उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने लगे। कर्मफल अवश्य ही नियमता ने अपने हाथ में रखा है फिर भी जहां तक कर्तव्य का संबंध है वहां तक मनुष्य अपनी मनमर्जी बरतने में स्वतंत्र है। अर्जित प्राणशक्ति के बारे में भी यही बात है। दैत्य स्तर के लोग भौतिक सामर्थ्यों की तरह आत्मिक विभूतियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तांत्रिक अघोरी कापालिक आदि ऐसे ही उद्धत प्रयोग करते रहे हैं। प्राणशक्ति को भौतिक लाभ के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जीवट वाले सामान्य परिस्थितियों में पैदा होने पर भी अपने लिए अपने उपयुक्त वातावरण बनाते और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हुए अभीष्ट क्षेत्र की प्रगति अर्जित करते हैं। वह कलाकार स्तर के लोग अपनी तत्परता तन्मयता कुशलता और जागरूकता के सहारे अपनी इच्छित सफलताएं अर्जित करते हैं जबकि अंगड़ स्तर के लोग किसी प्रकार अपना गुजारा भर चला पाते हैं। कई बार तो ऐसे जाल जंजाल बुन लेते हैं जिनके कारण उन्हें अनेकानेक विग्रहों संकटों का सामना करना पड़ता है। असावधान और अव्यावहारिक लोग अक्सर लोकव्यवहार में भी इतनी भूलें करते देखे गए हैं जिनके कारण उनके लिए चैन से दिन गुजारना भी कठिन पड़ जाता है। सफलता और समृद्धियां प्राप्त कर सकना तो दूर की बात बन जाती है। भौतिक क्षेत्र में अपने जीवन का सुनियोजन करने वाले आमतौर से अभीष्ट सफलता की दिशा में ही बढ़ते हैं। संपत्तिवान प्रगतिशील सफलताओं के अधिष्ठाता कहलाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग चालाकी भी अपनाते हैं पर इतना तो निश्चित है कि जीवट का धनी हुए बिना कोई उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता जिसे उन्नतिशील कहलाने का श्रेय मिल सके। अंगड़ और पुरुषार्थी दो स्तर के लोग आम जनता के बीच पाए जाते हैं। उन्हीं को गरीब अमीर व सफल असफल भी कहते हैं। किंतु इन सबसे ऊंचा एक और स्तर है जिसे देवमानव कहकर सराहा जाता है। प्रतिभाशाली उपयुक्त सफलताएं पाते हैं, भले ही उसका दुरुपयोग करके अपयश के भाजन ही क्यों न बने, किंतु जिनने अपने गुण कर्म स्वभाव को सुनियोजित व सुसंस्कृत बना लिया है, उनके लिए आत्मिक संतोष, लोक सम्मान और दैवीय अनुग्रह तीनों ही सुरक्षित रहते और दिन दिन समुन्नत होते जाते हैं। वस्तुतः व्यक्तित्व का परिष्कार और उदात्तीकरण ही वह योगाभ्यास है जिसके महात्म्य को लोक और परलोक की अभीष्ट सफलताएं देने वाला बताया गया है। प्रखर प्रतिभा का उद्गम स्रोत ईश्वर है, जिसे दूसरे शब्दों में सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय भी कहा जा सकता है। मनुष्य जीवन में वह गरिमामय आदर्शवादिता और उत्कृष्टता के रूप में अवतरित होता है। पूजा उपासना के समस्त कर्मकांडों का उद्देश्य इसी आंतरिक वरिष्ठता का संपादन और अभिवर्धन करना है। मशीनों में बिजली का करंट कम मात्रा में पहुंचता है तो उनकी चाल बहुत धीमी पड़ जाती है, पर जैसे जैसे वह विद्युत प्रवाह बढ़ता है वैसे वैसे ही उन सब में तेजी, गति और शक्ति बढ़ती जाती है। चेतना का कामचलाव अंश तो प्राणी मात्र में रहता है जिससे वह किसी प्रकार अपनी जीवनचर्या चलाता रह सके। यह जन्मजात है, किंतु जब कभी इसकी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है तो वह योग और तपपरक साधना करता है। इन दोनों का तात्पर्य प्रकारांतर से प्रतिभा और सेवा साधना में सरलता अनुभव होने की प्रवृत्ति ही समझी जा सकती है। योग दर्शन में अष्टांग साधना में सर्वप्रथम यम नियम की गणना की गई है। यह अंतरंग और बहिरंग सुव्यवस्था के ही दो रूप हैं। जिसने इस दिशा में जितनी प्रगति की, समझना चाहिए कि उसे उतनी ही आत्मिक प्रगति हस्तगत हुई और उसकी क्षमता उस स्तर की निखरी जिसका वर्णन महामानवों में पाई जाने वाली रिद्धि सिद्धियों के रूप में किया जाता है। उपासनात्मक समस्त कर्मकांडों की संरचना इसी एक प्रयोजन के लिए हुई है कि व्यक्ति की पशु प्रवृत्तियों के घटने और दैवी संपदाओं के बढ़ने का सिलसिला क्रमबद्ध रूप से चलता रहे। यदि उद्देश्य का विस्मरण कर दिया जाए और मात्र पूजा परक क्रियाकृतियों को ही सब कुछ मान लिया जाए तो यह चिन्ह घटाव पूजा को निर्जीव उपक्रम ही माना जाएगा और उतने भर से बड़ी चढ़ी उपलब्धियों की आशा करने वालों को निराश ही रहना पड़ेगा। समर्थ पक्षियों के नेतृत्व में अनेक छोटी चिड़ियां उड़ान भरती हैं। बलिष्ठ मृग के परिवार में आश्रय पाने के लिए उसी जाति के अनेक प्राणी सम्मिलित होते जाते हैं। चींटियां कतार बनाकर चलती हैं। बलिष्ठ आत्मबल के होने पर दैवी शक्तियों का अवतरण आरंभ हो जाता है और साधक क्रमशः अधिक सिद्ध स्तर का बनता जाता है। यही है वह उपलब्धि जिसके सहारे महान प्रयोजन सिद्धते और ऐसे गौरवास्पद कार्य बन पड़ते हैं जिन्हें सामान्य स्तर के लोग प्रायः असंभव ही मानते रहते हैं। बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रायः दो मोर्चे संभालने पड़ते हैं, एक यह कि अपनी निजी दुर्बलताओं को घटाना मिटाना पड़ता है। उनके रहते मनुष्य में आधी चौथाई शक्ति ही शेष रह जाती है, अधिकांश तो निजी दुर्बलताओं के छिद्रों से होकर बह जाती है। जिनके लिए अपनी समस्याओं को सुलझाना ही कठिन पड़ता है वह व्यापक क्षेत्र के बड़े कामों को सरंजाम किस प्रकार जुटा सकेंगे। भूखा व्यक्ति किसी भी मोर्चे पर जीत नहीं पाता। इसी प्रकार दुर्गुणी व्यक्ति स्वयं अपने लिए इतनी समस्याएं खड़ी करता रहता है जिनके सुलझने में उपलब्ध योग्यता का अधिकांश भाग खपा देने पर भी यह निश्चय नहीं होता कि अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने के लिए कुछ सामर्थ्य बचेगी या नहीं। बच्चों को लोरी गाकर सुला दिया जाता है। झूले पर हिलते रहने वाले बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं। रोने वाले बच्चे को अफीम चटाकर खुमारी में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को भी कुसंग और दुर्व्यसन में आलस्य प्रमाद का आदि बनाकर ऐसा कुछ बना दिया जाता है मानो वह अर्धमृत या अर्धविक्षिप्त अंगड़ स्थिति में रह रहा है। ऐसे व्यक्ति पग पग पर भूले करते और कुमार्ग पर चलते देखे जाते हैं। उपलब्धियों का आमतौर से ऐसे ही लोग दुरुपयोग करते और घाटा उठाते हैं, किंतु जिनने इस अनौचित्य की हानियों को समझ लिया है उनके लिए आत्मानुशासन कठिन नहीं रहता, वरन उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को उससे कहीं अधिक हल्की अनुभव करते हैं जो कुमार्ग पर चलने वाले को पग पग पर उठानी पड़ती हैं। परमार्थ कार्यों में समय और साधनों का खर्च तो होता है, पर वह उतने दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं करता जितना कि संकीर्ण स्वार्थपरता अपनाकर तत्काल दिखने वाले लाभों के व्यामोह में निरंतर पतन और पराभव ही हाथ लगता है। हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तित्व चाहिए, अन्यथा असावधान एवं अंगड़ जितना कुछ कर पाते हैं उससे अधिक हानि करते रहते हैं। ऐसों की न कहीं आवश्यकता होती है, न इज्जत और न उपयोगिता। ऐसी दशा में उन्हें जहां तहां ठोकरें खाते देखा जाता है। इसके विपरीत उन जागरूक लोगों का पुरुषार्थ है जो पूरे मनोयोग के साथ काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं। बड़प्पन ऐसों के हिस्से में ही आता है। बड़े काम संपन्न करते ऐसे ही लोग देखे जाते हैं। बड़ाई उन्हीं के हिस्से में आती है। साधन तो सहायक भर होते हैं। वस्तुतः मनुष्य की क्षमता और दक्षता गुण, कर्म, स्वभाव के निखार पर निर्भर रहती है। अध्यात्म जादूगरी नहीं है और न कहीं आसमान से बरसने वाले वरदान अनुदान देवी देवताओं का भी यह धंधा नहीं है कि चापलूसी करने वालों को निहाल करते रहें और जो इनके लिए ध्यान न दे सके उन्हें उपेक्षित रखें या आक्रोश का भाजन बनाएं। वस्तुतः देवत्व आत्मा जागरण की एक स्थिति विशेष है, जिसमें अपने ही प्रसुप्त वर्चस्व को प्रयत्नपूर्वक काम में लाया जाता है और सत्प्रयासों का अधिकाधिक लाभ उठाया जाता है। कहते हैं कि भगवान शेष शया पर सोते रहते हैं। कुसंस्कारी लोगों का भगवान उन बचकानों की बेहुदी धमा चौकड़ी से तंग आकर आंखें मूंद कर इसी प्रकार जान बचाता है, पर जो मनस्वी उसकी सहायता से कठिनाइयों में त्राण पाना चाहते हैं, उनके लिए द्रौपदी या गज की तरह उसकी कष्ट निवारण शक्ति भी दौड़ी आती है। जिन्हें वर्चस्व प्राप्त करना होता है, उन्हें सुदामा, नरसी, विभीषण व सुग्रीव की तरह वैभव भी प्रचुर परिमाण में हस्तगत होता है। इच्छा शक्ति संसार की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। साहस भरे संकल्प बल से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं। इसी को अर्जित करते जाना जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि स्वर्ग मुक्ति जैसे आध्यात्मिक और रिद्धि सिद्धि जैसे भौतिक लाभ इसी आधार पर उपलब्ध किए जाते रहते हैं। स्वयं का भार वहन करना भी आमतौर से कठिन काम माना जाता है। फिर अनेकों का भार वहन करते हुए उन्हें ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने को लक्ष्य पूरा करना तो और भी अधिक कठिन पड़ना चाहिए, पर यह कठिनाई या असमर्थता तभी तक टिकती है जब तक अपने में सामर्थ्य की कमी रहती है। उसका बाहुल्य हो तो मजबूत क्रेनें रेलगाड़ी के पटरी से उतरे डिब्बों को अंकुश में लपेटकर उठकर सीधा करती और यथास्थान चलने योग्य बनाकर अच्छी स्थिति में पहुंचा देती हैं। 21वीं सदी में उससे कहीं अधिक पुरुषार्थ किए जाने हैं, जितना कि पिछले दो महायुद्धों की विनाश विभीषिका में ध्वंस हुआ है, जैसे कि वायु प्रदूषण ने जीवन मरण का संकट उत्पन्न किया है, विषमताओं और अनाचारजन्य विभीषिकाओं ने भी संकट उत्पन्न किए हैं। शक्ति तो इन सभी में खर्च हुई, पर ध्वंस की अपेक्षा सृजन के लिए कहीं अधिक सामर्थ्य और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसका यदि संचय समय रहते किया जा सके तो समझना चाहिए कि दुष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण के कारण उन असंख्य समस्याओं का समाधान संभव होगा जो इन दिनों हर किसी को उत्तेजित, विक्षुब्ध और आतंकित किए हुए हैं। युग परिवर्तन प्रतिभा ही करेगी। प्रयोजन बड़ा होते हुए भी उसका समाधान सरल है। यदि प्रतिभाओं के परिष्कार का क्रम चल पड़े, उनके आविर्भाव का उपचार बन पड़े तो समझना चाहिए कि इन अनुदानों के सहारे विश्वव्यापी कार्य सज जाता है। सामाजिक और क्षेत्रीय समस्याओं को संभालते रहना और भी अधिक सरल पड़ता जाएगा। हर महत्वपूर्ण कार्य में तदनुरूप ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसके बिना तो छोटे छोटे कार्य भी पूरे नहीं होते। हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए। फिर युग निर्माण जैसा विश्वव्यापी और अत्यधिक भारी भरकम काम तो वरिष्ठ प्रतिभा संपन्नों के कंधा लगाए बिना पूरा हो सकने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। नवनिर्माण की विश्वव्यापी संरचना जिसने सोची और खड़ी की है, उसने इस पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्राणवान जीवट के धनी व्यक्तित्वों की अच्छी खासी सेना खड़ी करने की आवश्यकता अनुभव की है और उसे समय रहते जुटा लेने की तैयारी की है। यह उल्लेख उद्बोधन उन्हीं के लिए है। प्रतिभा परिष्कार का सुयोग उपयुक्त मात्रा में बन पड़ा तो फिर अपनी दुनिया का स्वरूप और परिवेश बदल डालने में नियमता के सामने और कोई बड़ी कठिनाई शेष न रहेगी। भूतकाल में भी मनस्वी लोगों ने एक से एक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। इनमें अगस्त्य का समुद्र सोखना, हनुमान का पर्वत उठाना एवं विश्वामित्र के तत्वावधान में रामराज्य की स्थापना होना जैसी घटनाएं ऐसी हैं जो बताती है कि करने मरने पर उतारू व्यक्ति के लिए क्या कुछ ऐसा है जिसे संभव करके नहीं दिखाया जा सकता। स्वर्ग से धरती पर गंगा उतारने वाले भागीरथ अपने कार्य में सफल हुए थे तो फिर कोई कारण नहीं कि नवनिर्माण में जुटे भगीरथों की अपनी मंडली भ्रम जंजाल से निकलकर सीधे और सरल काम कर सकने के लिए समर्थ नहीं बन सकती। प्रतिभाओं का निखार दूसरे तो क्या, किसी की भी कृपा अनुकंपा के ऊपर निर्भर नहीं है। वह तो पूरे तरह अपने बस की बात है। शरीर से इच्छानुसार काम लिया जा सकता है, उस पर पूरा नियंत्रण अपना रहता है। जो लोग संसार के वर्तमान प्रचलनों की बातों को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाए। अन्यथा अपने मनोबल और प्रयास को यदि दिशाबद्ध किया जा सके तो हर व्यक्ति अंतः की प्रेरणा से न जाने क्या से क्या कुछ करके दिखा सकता है। यह नया प्रयोग नहीं है, भूतकाल में ऐसे ही प्रयोग होते रहे हैं। युग बदलते रहे और मनुष्य अपनी प्रथा परंपराओं में आमूलचूल परिवर्तन करता रहा है। इस बार की महाकाल द्वारा दी गई चुनौती को अस्वीकार करते न बन पड़ेगा। गांधी, बुद्ध, ईसा आदि के धार्मिक आंदोलनों को सफल बनाने के पीछे भगवान की इच्छा कार्य करती रही है। इस बार प्रतिभावानों की पूर्ति का सरंजाम जुट रहा है। समय रहते वह पूरा भी होगा। यह संभावना अधूरी न रहेगी, क्योंकि प्रतिभावानों में हुंकार जब भी उठी है, उसने विशिष्ट स्तर की प्रतिभाओं को विकसित किया है। यह प्रतिभावानों की विशेषता रही है। इसके लिए शरीर बल, साधना बल, बुद्धि बल की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि गांधी, बुद्ध, विनोबा जैसे प्रतिभावानों की। समय स्वल्प हो तो भी अपने संपर्क क्षेत्र में प्रतिभा का परिचय देने वाले मनस्वी तो हर किसी को उभार सकते हैं और गीध, गिलहरी, शबरी, भील जैसे चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं जो छोटों के लिए भी संभव हो सकता है। 21वीं सदी में आंदोलन की भागीदारी स्वीकार करने के लिए भाव संवेदना के धनी वर्ग का आह्वान किया गया है। आरंभ की दृष्टि से हल्के काम सौंपे गए हैं। युग संधि पुरस्चरण के अंतर्गत जप, साधना, समयदान, अंशदान, साप्ताहिक सत्संग, झोला पुस्तकालय आदि। उन्हें हल्के दर्जे के स्काउट व्यायाम स्तर का समझा जाए, जिससे अभिरुचि और आस्था की परिस्थिति बढ़ चले, अंगड़ता मिटे, सुगड़ता विकसित हो। पृथ्वी का उत्तर ध्रुव निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त पदार्थ संपदा में से अपने लिए आवश्यक तत्व खींचता रहता है। वही धरती की विविध आवश्यकताएं पूरी करता है। जो निरर्थक अंश बचा रहता है, वह पदार्थ ध्रुव मार्ग से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। यही क्रम मनुष्य शरीर का है। वह अपनी रुचि और प्रकृति के अनुरूप चेतन तत्व आकाश में से खींचता और छोड़ता रहता है। उसी पूंजी से अपना काम चलाता है। क्या ग्रहण करना और क्या बहिष्कृत करना है, यह मनुष्य के मानसिक चुंबकत्व पर निर्भर है। यदि अपना मानस उच्च स्तरीय बन चुका है तो उसका आकर्षण विश्व ब्रह्मांड से अपने स्तर के सहकारी तत्व खींचता और भंडार करता रहेगा, पर पूंजी अपने मनोबल के अनुरूप ही जमा होती रहती है। वैसे मनुष्य को जन्मजात रूप से विभूतियों का वैभव प्रचुर मात्रा में मिला है, पर वह प्रसुप्ति की तिजोरी में बंद रहता है, ताकि आवश्यकता अनुभव होने पर ही उसे प्रयत्न पूर्वक उभारा और काम में लाया जा सके। सभी जानते हैं कि भूगर्भ में विभिन्न स्तर के रासायनिक द्रव्य भरे पड़े हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आकाश से निरंतर धरती पर प्राण तत्व की वर्षा होती रहती है। वनस्पतियों और प्राणियों का गुजारा इन्हीं उभयपक्षीय अनुदानों के सहारे चलता है। मानवीय व्यक्तित्व के संबंध में भी यही बात है। वह इच्छित प्रगति के लिए अपने वर्चस्व का कितना ही महत्वपूर्ण अंश उभार सकता है और अपने बलबूते वांछित दिशा में अग्रगमन कर सकता है। उर्वरता भूमि में होती है, पर उसके प्रकट होने के लिए ऊपर से जल बरसना भी आवश्यक है, अन्यथा उर्वरता हरितिमा का रूप धारण न कर सकेगी। मनुष्य को अपने में सन्निहित विशेषताओं को भी ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए और साथ ही अदृश्य जगत के विपुल वैभव का अंश भी अपनी आकर्षण शक्ति से खींचकर अधिकाधिक सुसंपन्न बनना चाहिए। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को प्रखर परिष्कृत बनाना और ईश्वर सान्निध्य स्थापित करके व्यापक शक्ति के लिए कुछ उपयुक्त से खींच बुलाना, ये दोनों ही क्रियाएं अपने ढंग से नियमित रूप से चलती रहें तो समझना चाहिए कि प्रगति का सुव्यवस्थित सरंजाम जुटने की समुचित व्यवस्था बन गई। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए चिंतन, चरित्र और स्वभाव को गुण, कर्म और भाव संवेदना को दिनों दिन अधिक उत्कृष्ट बनाते चलने की आवश्यकता को ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही आवश्यक यह भी है कि इस विराट विश्व की कामधेनु की अनुकूलता प्राप्त करके अमृत भरे पेयपान का लाभ उठाते रहा जाए। प्राण अपना है, प्रतिभा भी अपनी है, पर वह अंगड़ स्थिति में झाड़ झंखाड़ों से भरी रहती है। उसे सुरम्य उद्यान में बदलने के लिए कुशल माली जैसे अनुभव और सतर्कता भरा प्रयत्न चाहिए। जो उसे कर पाते हैं वे ही देखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी का प्रतिपादन 16 आना सच है। उसमें किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं है। घाटे में वे रहते हैं जो अपनी उपेक्षा आप करते हैं। जो अपनी अवमानना अवहेलना करेगा वह दूसरों से भी तिरस्कृत होगा और स्वयं भी घाटे में रहेगा। बड़े प्रयोजन के लिए प्रतिभावानों की आवश्यकता। 21वीं सदी में अपनी अपनी भावना और योग्यता के अनुरूप हर किसी को कुछ न कुछ करना ही चाहिए। व्यस्तता और अभावग्रस्तता के कुहासे में कुछ करना धरना सूझना पड़ता हो तो फिर अपनी मन स्थिति और परिस्थिति का उल्लेख करते हुए शांतिकुंज हरिद्वार से परामर्श कर लेना चाहिए। विशेषत इस शताब्दी में प्रखर प्रतिभाओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। पिछली शताब्दी में प्रदूषण फैला, दुर्भाव बढ़ा और कुप्रचलन का विस्तार हुआ है। उसमें सामान्य जनों का कम और प्रतिभाशालियों द्वारा किए गए अनर्थ का दोष अधिक है। अब सुधार की वेला आई है तो कचरा बिखेरने वाले वर्ग को ही उसकी सफाई का प्रायश्चित करना चाहिए। तोड़ने वाले मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, किंतु कलात्मक निर्माण करने के लिए अधिक कुशल कारीगर चाहिए। नवनिर्माण में लगाई जाने वाली प्रतिभाओं की दूरदृष्टि, कुशलता और तत्परता अधिक ऊंचे स्तर की चाहिए। उनका अंतराल भी समुज्ज्वल होना चाहिए और बाह्य दृष्टि से इतना अवकाश एवं साधन भी उनके पास होना चाहिए ताकि अनावश्यक विलंब न हो और नए युग की क्षतिपूर्ति कर नवनिर्माण वे विश्वकर्मा जैसी तत्परता के साथ कर सकें जो एकांगी न सोचे वरन बहुमुखी आवश्यकताओं के हर पक्ष को संभालने में अपनी दक्षता का परिचय दे सकें। यही निर्माण आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सृजेता ही कार्य संपन्न कर दिखाता है। मूकदर्शक तो खड़े खड़े साक्षी की तरह देखते रहते हैं। ऐसी भीड़ में असुविधा ही बढ़ती है। गंदगी और गड़बड़ी फैलाते रहना ही अंगड़ लोगों का काम होता है। सृजेता की सृजन प्रेरणा किस गति से चल रही है और उज्ज्वल भविष्य की निकटता में अब कितना विलंब है, इसकी जांच पड़ताल एक ही उपाय से हो सकती है कि कितनों के अंतःकरण में उस परीक्षा की घड़ी में असाधारण कौशल दिखाने की उमंगें उठ रही हैं तथा स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ अपनाना कितना अधिक सुदृढ़ होता चला जाता है। समय की सबसे बड़ी आवश्यकता नवसृजन के लिए सोच तो कोई कुछ भी सकता है, पर क्रियारूप में कुछ कर पड़ना उन्हीं के लिए संभव हो सकता है जो निजी महत्वाकांक्षाओं में कटौती करके अधिक से अधिक समय, श्रम, मनोयोग एवं साधनों को नियोजित कर सकें। भवन खड़ा करने के लिए ईंट, चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि अनिवार्य रूप से चाहिए। युगसृजन भी ऐसे ही अनेक साधनों की अपेक्षा करता है। उन्हें जुटाने के लिए पहला अनुदान अपने से ही प्रस्तुत करने वालों को ही यह आशा करनी चाहिए कि अन्य लोग भी उसका अनुकरण करेंगे, ऐसा समर्थन सहयोग देने में उत्साह का प्रदर्शन करेंगे। कहा जा चुका है कि युगसृजन जैसा महान उत्तरदायित्व पूरा करने में सृष्टा की उच्च स्तरीय सृजन शक्तियां ही प्रमुख भूमिका संपन्न करेंगी। मनुष्य की औसत उपलब्धि तो यही रही है कि वह बनाता कम और बिगाड़ता अधिक है, पर जहां बनाना ही बनाना एकमात्र लक्ष्य हो, वहां तो सृष्टा की सृजन सेना ही अग्रिम मोर्चा संभालती दिखाई देगी। हर सैनिक के लिए अपने धन का अस्त्र शस्त्र होता है। युगसृजन में आदर्शों के प्रति सघन श्रद्धा चाहिए और ऐसी लगन जिसे कहीं किन्हीं आकर्षण या दबाव से विचलित न किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को ही देवमानव कहते हैं और उन्हीं के द्वारा ऐसे कार्य कर गुजरने की आशा की जाती है। जिन तथाकथित कुंठाग्रस्त व मायाग्रस्त लोगों को सुनने विचारने तक की फुर्सत नहीं होती, उनसे तो कुछ बन पड़ेगा ही कैसे। ईश्वर का स्वरूप न समझने वाले उसे मात्र मनोकामनाओं की पूर्ति का ऐसा माध्यम मानते हैं जो किसी की पात्रता देखे बिना आंखें बंद करके योजनाओं की पूर्ति करता रहता है, भले ही वे उचित हों या अनुचित। किंतु जिन्हें ब्रह्मसत्ता की वास्तविकता का ज्ञान है, वे जानते हैं कि आत्मपरिष्कार और लोक कल्याण को प्रमुखता देने वाले ही ईश्वर भक्त कहे जाने योग्य हैं। इसके बदले में अनुग्रह के रूप में सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के अनुदान मिलते हैं। उनकी उपस्थिति से ही पुण्य प्रयोजन के लिए ऐसी लगन उभरती है जिसे पूरा किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। उस ललक के रहते वासना, तृष्णा और अहंता की मोह निद्रा या तो पास ही नहीं फिटकती या फिर आकर वापस लौट जाती है। नररत्न ऐसों को ही कहते हैं। प्रेरणाप्रद इतिहास का ऐसे ही लोग सृजन करते हैं। उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए सामान्य सामर्थ्य वाले लोग परमलक्ष्य तक पहुँच कर रहते हैं। यही उत्पादन यदि छोटे बड़े रूप में उभरता दीख पड़े तो अनुमान लगाना चाहिए कि भावभरा बदलाव आने ही वाला है। कोपले निकली तो कलियां बनेंगी, फूल खिलेंगे, वातावरण शुभायमान होगा और उस स्थिति के आते भी देर न लगेगी जिससे वृक्ष फलों से लदते और अपनी उपस्थिति का परिचय देकर हर किसी को प्रमुदित करते हैं। इन दिनों औसत आदमी संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति में एड़ी से चोटी तक डूबा प्रतीत होता है। उनकी आंखें न सृजन होकर इर्द गिर्द बिखरे हुए पतन पराभव को देखती हैं और न ऐसा कुछ सूझता है कि अवांछनीयता को औचित्य में बदलने के लिए उनसे क्या कुछ बन पड़ सकता है। जिनके कानों में कराह की पुकार ही नहीं पहुंचती है, जिन्हें घुंघरू के बोल ही सुहाते हैं, वे युग की पुकार और ईश्वर की वाणी सुन सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। मानवीय भाव संवेदना जहां से पलायन कर जाती है और जहां मरघट जैसी नीरवता और नीरसता ही छाई रहती है, वहां शालीनता का स्नेह सद्भाव कैसे बन पड़ेगा, कैसे उस दिशा में उनके कुछ कदम उठ सकेंगे। ऐसे वातावरण में यदि कोई पुण्य परमार्थ को वरण करने की बात सोचता है तो समझना चाहिए इसी आकाश में उदीयमान नक्षत्रों की चमक प्रारंभ हुई और रात्रि को भी रत्नजड़ित चांदनी से सजा देने वाली मंगलमयी वेला का आगमन शुरू हुआ। आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगन का जहां भी उदय हो रहा है, समझना चाहिए कि वहां किसी देवमानव का आविर्भाव हो रहा है। बड़े काम बड़े लोग कर पाते हैं। हाथी का वजन हाथी ही उठाता है। गधे की पीठ पर यदि उसे लाद दिया जाए तो बेचारे की कमर ही टूट जाए। क्षुद्र कृमि कीटक मात्र अपना अस्तित्व बनाए रहने की परिधि में ही क्षमताओं को खपा देते हैं। उनसे यह बन नहीं पड़ता कि आदर्शों की बात सोचें, उत्कृष्टता अपनाएं और विश्व कल्याण के क्रियाकलापों में रुचि लेकर कुछ ऐसा करें जिसकी युगधर्म ने पुकार लगाए और गुहार मचाई है। वर्षा आती है तो हरितिमा अनायास ही सर्वत्र उभर पड़ती है। वसंत आता है तो हर पेड़ पौधे पर फूलों की शोभा निखरती है। समझना चाहिए कि नवसृजन की इस पुण्यवेला में तनिक सी गर्मी पाते ही मलाई दूध के ऊपर आकर तैरने लगेगी। नवयुग का चमत्कार अरुणोदय की तरह यह दृष्टिकोण उभारेगा कि लोग अपने निर्वाह के प्रति स्वल्प संतोषी दृष्टिकोण अपनाएंगे और युगधर्म की बहुमुखी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस प्रकार जुट पड़ेंगे मानो इसी एक काम के लिए उनका सृजन अवतरण हुआ हो। अप्रत्याशित को निर्झर की तरह जमीन फोड़कर उभर पड़ना उसी को कहा जाएगा जो अगले दिनों होने जा रहा है। समय अपनी गति से चलता और बदलता है, पर जब कभी आकस्मिक परिवर्तन दीख पड़े तो समझना चाहिए कि संध्याकाल जैसा परिवर्तन पर्व निकट है। उसमें बहुत कुछ बदलना है, पर बदलाव की प्रथम किरण जहां से दृष्टिगोचर होगी उसे प्रखर प्रतिभाओं का अभिनव उद्भव कहा जा सकेगा। भगवान मनुष्य के रूप में परिवर्तित होंगे और उनकी निजी गतिविधियों का परिवर्तन विश्व परिवर्तन की भूमिका बनकर और व्यापक बनता चला जाएगा। योजना, प्रेरणा, दक्षता, व्यवस्था और समर्थता तो भगवान की काम करेगी, किंतु श्रेय वे लोग प्राप्त करेंगे जिनकी अंतरात्मा में युग के अनुरूप श्रद्धा और लगन जग पाई है। मुर्गा जगकर अपने जागने की सूचना देता है, पर उसकी बांग को सुनकर असंख्यों को ब्रह्म मुहूर्त की सूचना मिलती है और वे भी अरुणोदय वेला का लाभ लेने के लिए कार्यक्षेत्र में कदम उठाते हुए अगले दिनों दृष्टिगोचर होंगे। सद्बुद्धि का उभार कैसे हो? अभावों और संकटों में से कितने ही ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को आए दिन बेचैन रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे संपन्नों से आश्रय लेता है और अपने मन को उनके अधीन करता है।